सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।
ओम शांति। द आर्ट ऑफ रिलेशनशिप में आज हम सुनेंगे कि संबंधों में यदि कड़वाहट आ गई तो उसको समाप्त करने कैसे समाप्त किया जाए। तो जब दो व्यक्ति के स्वभाव संस्कार में जब टक्कर हो जाती है या उसका मिलाप नहीं होता आपस में तो क्या हो जाता है, संबंध खराब हो जाते हैं उनके, यानी संबंध में खराबी आ जाती, मतभेद आ जाती है, वो रूठ जाते एक दूसरे से। और मतभेद आने के कारण दोनों के इसमें क्या होता है, तनाव बढ़ जाता है, यानी दो व्यक्ति का इतना तनाव बढ़ जाता है कि वहाँ का जो वायुमंडल भी है इतना तनावयुक्त हो जाता है। क्या वो तो वायुमंडल तनावयुक्त होता ही है, लेकिन उनके संबंध संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है उसको क्या होता है, उस वाइब्रेशन का प्रभाव उनके ऊपर ही पड़ जाता है, यानी जितना ये हो जाता है प्रभाव बढ़ता है। जब वो कोई भी समझे दो व्यक्ति जैसे पति पत्नी उनके संबंध में तनाव आ गया, कड़वाहट आ गया, और जब जो दोनों एक साथ आ गए समझे तो और तनाव ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे जी हाँ, उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ जाता है, पूरे परिवार पर पड़ जाता है। जैसा माँ और बेटी है उसके भी कई संबंध में बिगाड़ हो जाता है, जैसा पुत्र और पिता के संबंध में है, तो इस प्रकार वायुमंडल खराब हो जाता है। और जी हाँ, और पड़ोसी भी आ गया तो यानी प्रभाव पड़ ही जाता है। तो इस प्रकार वो, लेकिन क्या होता है, वो प्रभाव तो पड़ता है लेकिन वो एक दूसरे की बात छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। यानी जैसे किसी बात के ऊपर उनका तनाव हो गया समझो, वो बात क्या पकड़ के रखते, जैसे हम शोकेस में कोई शोपीस रखती है तो उस प्रकार वो अपने दिल में रख देते, छोड़ते नहीं है। तो ये हो जाता है उसके अंदर, यानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो अभी हम देखेंगे कि ये छोटे बच्चे समझो, उसमें यदि मतभेद हो गया तो वो लोग तुरंत छोड़ देती है, लेकिन बड़े क्या करते, कितने सालों तक उसके अंदर वो तनाव बड़ा रहता है मगर वो बात छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, यानी कई दस दस बीस बीस साल तक वो बात दिल से निकलती नहीं, इतना दिल में छुपा के रखती। इस पर मुझे अपने बचपन की याद आ रही है, क्योंकि हम चौथी या पांचवी क्लास में होंगे उस समय जब हमारे जो क्लासमेट रहते थे उनके साथ कभी किसी का मतभेद भी हो जाता, झगड़ा हो जाता था, तो वो क्या करते थे, एक आधे दिन बातचीत नहीं करते थे, यानी एक दिन तो चला लेते थे, मगर दूसरे दिन क्या होता था उसको बहुत परेशानी हो जाती थी, बातचीत न होने के कारण वो टेंशन में आ जाते थे, और तीसरे दिन क्या करते थे, वो किसी एक अंदर व्यक्ति ढूंढ लेते थे कि हमारा दोनों की बातचीत करा दो करके। बाद में वो व्यक्ति क्या करता था, दोनों को एक जगह पर बिठा देता था और उसको यानी बोलने के लिए बोलता था, पहले आप उसका नाम लो फिर उसका आप ले लो। तो पहले लेंगा कौन नाम, तो बच्चे रहते थे जिनको ज्यादा जरूरत रहती थी बोलने की, तो वो ले लेता था नाम। तो इस प्रकार नाम ले करके उसकी बातचीत हो जाती थी, यानी बाद में ऐसे मिलजुल जाते थे वो बच्चे कि कुछ किस बात पर अपन ना झगड़ा हुआ वो भी भूल जाते थे, यानी छोड़ देते थे वो बात। जैसे अभी अपन कभी देखते हैं कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे झगड़ रहे हैं, तो जब उनके माँ बाप जब देखते हैं कि दोनों बच्चे झगड़ रहे हैं तो फिर वो माँ बाप भी झगड़ना शुरू कर देते, इधर इनका झगड़ा चालू रहता है और वो बच्चे मिल जाते, दोनों भी मिक्स हो जाते। तो जिस प्रकार यानी वो मिल जाते, लेकिन बच्चे यानी छोटे छोड़ देते बात, परंतु बड़े क्या करते पकड़ के रखते है। तो इस प्रकार वायुमंडल है दुनिया में, तो बहुत तनावयुक्त वायुमंडल है, अपने बीच के परिवार में ही तो है, मगर उससे ज्यादा दुनिया की हालत देखेंगे तो उसमें और भी ज्यादा प्रभाव है, यानी उसमें रहती छोटी सी बात लेकिन बड़ी बड़ी समस्या पैदा कर देती। इस पर और एक मुझे सच्ची घटना याद आ रही है कि उधर के 10 साल पहले की बात है, हम पहले उधर ही रहती थी हमारे सेंटर पर गाँव में, तो एक माता थी बहुत अमीर घराने की थी, वो रोज डेली सेंटर पर आती थी, मुरली डेली नहीं आती थी, खाली हफ्ते में एक दिन आती थी मुरली सुनने के लिए, और बाकी दिन एक छोटी बहन उनके घर में जाकर उनको मुरली सुनाती थी। और उनका बिजनेस था कपड़े का, यानी उनके दो बेटे थे वो बिजनेस संभालते थे, मगर एक दिन क्या हो गया, वो माता हफ्ते में एक दिन आती सेंटर पर, मगर उस दिन वो रात को 9 बजे सेंटर पर आ गई। तो वो बहन जी को भी वंडर लगा क्योंकि इतने रात को क्यों आ गई, कभी आती नहीं और इस समय कैसे आ गई। तो उसने पूछा फिर, तो आप अचानक इतने समय क्यों आ गई, तो फिर उसने सारी स्टोरी बता दी कि हमारे दो बेटे बोले उनको आपस में मतभेद हो गया, बोले पहले एक मास के पहले मतभेद हुआ था बोले, तो फिर हमने उनका जो बिजनेस है दोनों का अलग अलग कर दिया बोले, जो कपड़े का दुकान था उनका तो दोनों बच्चों को अलग कर दिया, मकान का भी अलग अलग कर दिया बोले, वो रहते थे बोले। बाद में क्या हुआ, एक मास के बाद वो बिजली का बिल आता है ना, वो बिल आ गया इलेक्ट्रिक, तो फिर वो उस समय तो 5,000 रुपये आया था उनका। तो फिर वो बड़ा भाई है वो बोलता था कि आप ज्यादा बिजली खर्चा करती है क्योंकि आपके घर में ज्यादा एसी चलाती है, आप टीवी चलती है, मेरी कम चलती है, इसलिए 1,000 रुपये आप ज्यादा दो, मैं 5,000 यानी मैं 2,000 दूंगा आप 3,000 दो। तो वो छोटा भाई बोलता था नहीं मैं क्यों दूंगा, क्योंकि दोनों ने यानी आधी आधी बिजली ये किया है जलाई है, तो आप भी आधे तो मैं आधा दूंगा, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं। एक मास तक उसका वैसा बात चालू रहा। बाद में क्या हुआ, एक मास के बाद वो बिल तो एक मास के पहले भरना पड़ता है, उन लोगों ने भरा नहीं, तो फिर वो बिजली डिपार्टमेंट वाले उनके घर में आ गया और उनको इंटीमेशन दे दिया कि आप बोले 8 दिन के अंदर ही आपका बिजली का भी पेड कर दो, नहीं तो फिर हम बिजली काटेंगे। तो फिर वो चला गया पता करके, मगर 8 दिन के बाद ही उन लोगों ने वो बिल पेड नहीं किया, तो फिर वो 8 दिन के बाद वो लोग आ गए और बिजली कट कर दिया उन्होंने, वो चले गए। बाद में वो लोग रहेंगे कैसे, अमीर लोग हैं, उसको एसी चाहिए थी और धूप का लेके दिन समय था वो, तो उनकी जो बीबिया थी पत्नी उन्होंने कहा अपने बेटे के साथ वो मायके चली गई, यानी रियल घटना है, बच्चों को लेकर दोनों की बीबिया मायके चली गई। और बाद में माता जी का प्रश्न रहा था, माता जी सेंटर पर आ गई और वो दो भाई ही वो घर में रहे, वैसे भी मच्छर काट रहे थे उनको। तो देखो यानी बात तो छोटी, वो तो आगे का पता नहीं, मगर तब तक वो माता ने इतना बता दिया आगे कुछ क्या होगा, मगर देखो बात कितनी छोटी सी बात थी मगर उन लोगों ने कितनी बड़ी कर दिया। बाबा ही बोलते ना बड़ी बात को छोटा करो, मगर दुनिया के लोग देखो यानी छोटी बात को इतना बड़ा कर दिया, और वो समस्या के कारण सारे लोग वो दुख भोगने लगे। तो इस प्रकार दुनिया की हालत है, तो ऐसी संबंध में यदि कड़वाट आ गई तो फिर इस प्रकार से उनको तो जिन व्यक्ति का हुआ उनको तो प्रभाव पड़ता है उन पर, वो तो दुख भोगती है, लेकिन बाकी उनके संबंध संपर्क में जो भी लोग आए थे उसको ही भोगना पड़ता है। तो इसलिए अभी हम देखेंगे कि संबंध में जो मतभेद होती है तो वो मतभेद होने के कारण क्या है, किन किन कारण से मतभेद होती है, थोड़ा आप भी बताइए कौन से कारण है। हाँ, मिस अंडरस्टैंड, एक दूसरे को न समझना, तो उसके कारण ही आपस में यानी मतभेद हो जाती है और ज्यादा ज्यादा समझ लेती है। हाँ, एक दूसरे को अपने को होशियार समझ लेती है, तो होशियार के कारण ही मतभेद हो जाता है। हाँ, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देती है, रिस्पेक्ट न देने के कारण किसको लगता है ना हम तो बड़े हैं, हमको रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो उसी कारण भी वो रूठ जाती है और मतभेद हो जाता है। और जी हाँ, मैं सही हूँ दूसरा गलत है, अपने आप को सही सिद्ध करते हैं कि मैं सही हूँ दूसरा गलत है, और उसमें उसकी भैंसबाजी हो जाती है और मतभेद हो जाता है। हाँ, स्वार्थ के कारण भी होता है। हाँ, छिपाती अपनी कमी कमजोरी छिपाती है, छिपाने का प्रयत्न करती है। जी हाँ, सच्चाई नहीं रखते हैं। हाँ, खुद फॉलो नहीं करते, दूसरे को बोलते हैं फॉलो करो, दूसरे को बताते, तो उसके कारण ही आपस में मतभेद हो जाते हैं। एक दूसरे के अवगुण देखते हैं, अवगुण देखने के कारण ही मतभेद टक्कर हो जाते हैं स्वभाव संस्कार में। हाँ, कंप्लेंट। हाँ, सॉरी बोलते हैं ना, यदि गलती हो ही गई तो सॉरी कभी बोलेंगे नहीं। हाँ, हमें से हम भी भूलेंगे। अरे को तो अभी हमने ऐसे यानी कारण और निवारण के पांच पांच पॉइंट निकाले, तो पहले हम कारण देखेंगे किन किन कारणों से संबंध में यानी कड़वाहट आ जाती है। तो उसका पहला कारण है यानी अपेक्षाएं रखते हैं। यदि अपने ब्राह्मण परिवार में देखा जाए तो दो व्यक्ति क्या करते, एक दूसरे के प्रति अपेक्षा रखते और अपेक्षा पूरी न होने के कारण क्या होता है, मतभेद हो जाता है। जैसे सेंटर का वातावरण देखो, जैसे बड़ी बहन रहती है तो उनका क्या रहता है, छोटे नहीं हमारा रिगार्ड रिस्पेक्ट देना चाहिए हमको, यानी जो श्रीमत अनुसार हमने दिए उस श्रीमत अनुसार चलना चाहिए, जो हमने रूल बनाया है उस रूल अनुसार सभी ने चलना चाहिए। यदि वो किसी ने फॉलो नहीं किया फिर वो उसके आधा घंटा क्लास करा देंगी, तो फिर उसमें क्या छोटे बहन यानी बड़े बहन के प्रति उनको क्या हो जाएगा, थोड़ा रिस्पेक्ट कम हो जाएगा ना, तो फिर मतभेद आ जाती है यानी एक दूसरे के प्रति यानी तनाव निर्माण हो जाता है। तो फिर वो भी देखना है कि हम दूसरे के यानी को किनका कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो देख करके भी अपना नियम यानी ये करना चाहिए ना, यानी संबंध में एक दूसरे के प्रति अपेक्षा रखते हैं और वो अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो संबंध में कड़वाहट आ जाता है। दूसरी बात हमने निकाली वो चुगली, यानी चुगली भी है छोटी सी मगर बहुत बड़ा विकार होता है, उसके कारण बहुत कुछ ऐसी समस्या पैदा कर सकती है। जैसे चुगली का दूसरा रूप क्या है, कानफूस बोलते ना अपन, यानी एक की दूसरे को बता देना। जी हाँ, और उसका बड़ा रूप बोलेंगे तो मंत्रा, माया मंत्रा के रूप में आ जाती है। जैसे महाभारत में ये घटना घटी तो राम क्योंकि मंत्र आने यानी क्या कई कई को ऐसा मंत्र फूक दिया कि जिसके कारण दूसरे दिन में वो राम का राज्याभिषेक होने वाला था और सभी प्रजा यानी हर्ष मनाने वाली थी, लेकिन देखो उसने उसके कान में मंत्र देने के कारण उसको क्या हुआ, राम को राज्य पर बैठने के बदले उसको जंगल में जाना पड़ा। तो इस प्रकार चुगली से भी बहुत बड़ा यानी नुकसान होता है, यानी समस्या पैदा हो सकती है। तो ये चुगली आती कैसे, चुगली कैसे करती है, तो जैसे समझो दो जो व्यक्ति है, दो व्यक्ति जैसा उसका, हाँ जी हाँ, ईर्ष्या के वश भी चुगली आती है। जैसे दो व्यक्ति है समझो, यानी उसका आपस में बहुत अच्छा बन रहा, जैसे पुरुषार्थी लोग है बहुत, दो मिलजुल के पुरुषार्थ कर रहे हैं, या कोई दो डिपार्टमेंट के लोग है समझो, वो भी मिलजुल के रहते हैं, खाते है, पीते घूमने के फिरने दोनों ही जाती है, ऐसा भी रहता है कि एक डिपार्टमेंट वाले दूसरे डिपार्टमेंट की ऐसी कोई दोस्ती रहती है तो वो भी मिलजुल के रहती है, तो कई तीसरा व्यक्ति भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो देखता ही रहता है कि इन दोनों में मतभेद कब हो जाए, और यदि ड्रामा वैसे यदि हो भी गया उसके अंदर मतभेद समझो, तो फिर वो क्या करता है, क्योंकि मतभेद हो गया तो वो व्यक्ति फिर बताता है ना कि वो भाई की गलती थी, मेरी नहीं गलती थी। फिर वो तीसरा व्यक्ति इतनी एकाग्रता से सुन लेता है उनकी बात, और सुन करके फिर क्या करेंगे वो, हाँ वो बात उसको, हाँ दीजिए दूसरे यानी दूसरे को बताएगा कि वो भाई आपके बारे में ऐसा ऐसा बता रहा था। फिर इनका भी टेंशन बढ़ जाता है कि गलती तो मेरी नहीं थी, तो फिर और भी क्या होता है, उनका तनाव और बढ़ जाता है। जैसे आग में केरोसिन डालते आग भड़क जाती है ना, तो उस प्रकार उनका मतभेद और भी भड़क जाता है। तो इस प्रकार चुगली भी यानी मतभेद करने के लिए कारणीभूत हो सकती है। अभी तीसरा पॉइंट है यानी एक दूसरे की भावना यानी संशय बुद्धि, यानी संशय बुद्धि, संशय बुद्धि हो जाती है कभी कभी। यदि संशय कैसा आता है, हाँ किसी को धोखा मिल जाता है तो संशय आ जाता है, हाँ खुद पे विश्वास नहीं होता है तो संशय आ जाता है। समझो दो व्यक्ति है, उसमें कभी एक दो मास के पहले कुछ हो गए समझो, और वो व्यक्ति किसी कहीं बैठा है और दूसरा व्यक्ति उनके पास ही बैठा है, यदि वो ज्ञान की बातें रूरान कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, तो इनको क्या होता है संशय आ जाता है कि वो व्यक्ति मेरे बारे में ही कुछ बता रहा होगा, तो इस प्रकार वो अनुमान लगा देता है। तो और बाद में उसको पूछेगा वो कि वो भाई मेरे बारे में कुछ बता रहा था क्या, तो इस प्रकार संशय आ जाता है। और एक दूसरे को संशय आने के बाद फिर संबंध में क्या मतभेद हो जाता है। तो चौथी बात हमने निकाली है कि एक दूसरे को न समझना, किसी भाई ने बताया था ना कि एक दूसरे की भावना का न जानना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे की भावना कोई जानती ही नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया समझो, उसका भाव तो अलग रहता है बोलने का, मगर वो बात पकड़ के रखता है कि उसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला, तो वो बात पकड़ करके फिर एक दूसरे की भावना दुखा देता है, फिर उसके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसकी सेवा सुनता नहीं समझो, क्या सेवा में सहयोग नहीं देता, इस प्रकार के होता है। ऐसी एक घटना यानी हमारे साथ हुई थी कि जैसे हमारे डिपार्टमेंट में एक भाई आए थे कि उनको कोकी चाहिए थी, तो वो बोल रहे थे कोकी, उस समय हमारे पास कोकी नहीं थी, तो फिर नहीं थी तो हमने दिया नहीं उसको, अभी है नहीं बा कर ले जाना, तो फिर उतनी बात तो पकड़ के रख दिया उसने, उसको लगा इन्होंने झूठ बोल दिया, होते भी हमको दिया नहीं। तो फिर वो भाई का व्यवहार थोड़ा सा बदल गया, वो ठीक ठाक से बात नहीं करता था। बाद में क्या हुआ, 5-6 मास के बाद हमें जरूरत पड़ी उनके डिपार्टमेंट में जाने कोई चीज मांगने की, तो फिर उस समय हमने चीज मांगी तो उसने दिया नहीं वो चीज हमको, क्योंकि वो बोले आपने उस समय मेरे को ये नहीं दिया था, अभी हम भी नहीं देंगे। यानी देखो यानी कितने दिन तक वो लोग अपनी बात पकड़ के रखते, हम तो भूल भी गए थे क्या हुआ क्या नहीं, मगर उसने पकड़ के रखी थी। तो इस प्रकार कभी कभी ऐसा होता है कि अपन बोल देते हैं और अपन को भी याद नहीं रहती है, मगर वो दूसरा व्यक्ति वो पकड़ के रख देता है बात। तो एक दूसरे की भावना न समझने के कारण भी आपस में क्या होता है, तनाव हो जाता है यानी कड़वाहटपन आ जाते हैं। और एक और तो लास्ट में एक पांचवा पॉइंट है यानी तुलना करते एक दूसरे के साथ। जैसे दो व्यक्ति है तो वो तुलना करते कि मैं बहुत बड़ा हूँ ये छोटा है, मैं इतना इंचार्ज हूँ, मेरे हाथ में बहुत कुछ अथॉरिटी है, ये लोगों के पास नहीं है क्योंकि मैं अच्छे भाषण कर सकता हूँ, या मैं बहुत स्टार सिटी का हूँ, ये छोटे गांव का है। तो इस प्रकार क्या करते आपस में वो यानी तुलना करते हैं, और आपस में तुलना करने के कारण क्या होता है उसमें मतभेद हो जाता है यानी संबंध में कड़वाहट आ जाती है। तो ये 5 पॉइंट हो गए संबंध में कड़वाहट आने की। कौन सी 5 पॉइंट है, सबसे पहला अपेक्षा, हाँ दूसरा चुगली, हाँ तीसरा संशय, चौथा हाँ भावना न समझना, और पांचवा तुलना करना। तो ये 5 पॉइंट। तो इसके कारण क्या होता है यानी तो अपने संबंध में कड़वाहट आ जाती है और वो समस्या का रूप धारण कर देती है। तो अभी हम इस समस्या का समाधान कैसा करें, इसके हमने 5 पॉइंट निकाले है। तो किसी संत ने ऐसा कहा है कि दो व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करे कि जिनके कारण यानी हमारे कारण किसी की आंखों में पानी ना आए, तो हमारे लिए दूसरे की आंखों में पानी आ जाए। यानी हम ऐसा कारण न बने कि हमारे कारण किसको दुख हो जाए और दुखी हो जाए बेचारा, ऐसा ना करे तो हमारी यानी उपस्थिति न होने के कारण किसकी आंखों में पानी आना चाहिए, ऐसे हमको कर्म करना चाहिए। तो इसलिए जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उनको हमने दुख नहीं देना चाहिए कि वो खुशी देनी चाहिए कि संबंध संपर्क में आते ही उसका दर्द दुख दूर होना चाहिए, ऐसे हमने कर्तव्य करना चाहिए। तो इस प्रकार अभी हम देखेंगे कि समाधान यानी कड़वाहट समाप्त होने के लिए ऐसे कौन से कारण है, कौन से कारण हो सकता है? हाँ, नरम दिल करना यानी और एक्सपेक्ट करना, बड़ा दिन रखना, हाँ दिल भी बड़ा रखना, यदि अपने आप को हाँ पूर्वज की स्मृति भी तो आ गया हिंगा। तो तो अभी हमें वो पांच पॉइंट निकाले तो वो उसका समस्या का समाधान कैसे करे। तो पहला है सभी के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना, ये तो सभी रखती है और रखना भी चाहिए क्योंकि जो भी हमारे संबंध संपर्क में आती है तो उसकी हमने अवगुण नहीं देखने चाहिए, गुण ही देखो। जैसे बाबा है क्या करते, किसी के अंदर 10 अवगुण है और एक गुण है, तो बाबा क्या करते, एक गुण देखते 10 अवगुण को नहीं देखते। तो हमें भी किसी से तो कोई गलती होगी, हमें दुख भी दे दिया, हमने उसके कल्याण का सोचना चाहिए, इसका ही कल्याण हो जाए क्योंकि उसके हर एक के अंदर एक नहीं गुण रहता है, भलाई सब अवगुण भी होंगे परंतु बाबा को उन्हें पहचान लिया, ये गुण तो हो गया ना उसके अंदर। क्योंकि आप दुनिया के लोग है, साधु संन्यासी लोग भगवान को पाने के लिए कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भगवान नहीं मिलता, लेकिन उस आत्मा ने भगवान को पहचान लिया तो ये भी बहुत बड़ा गुण हो गया ना उसका। तो हमने वो गुण देखना है, तो गुण देखेंगे तो संबंध क्या हो जाएंगे, हमारे अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखनी है, यदि वो हमें दुख भी देता होगा, हमारे ग्लान भी करते होंगे, तो भी हमें अपने मन को समझाना है कि द्वापर युग में जो भी जड़ मूर्ति की पूजा की है यानी तीर्थ यात्रा की है, उसके लिए व्रत के उपवास की है, तो वो तो यादगार उनका भी है ना। तो आज वो हमारे चैतन्य में हमको मिल रहा है तो उसका हम रिगार्ड रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखने से क्या हो जाएगा, संबंध में यानी अच्छे यानी मधुरता आएंगे यानी कड़वाहट निकल जाएगा। दूसरी बात है कि सरल चित्त, अपना स्वभाव कैसा करना है, सरल चित्त करना। सरल चित्त इतना अच्छा गुण है कि वो कैसी भी परिस्थिति, विकट परिस्थिति भी क्यों ना है या कोई कैसे भी स्वभाव संस्कार वाला व्यक्ति उनके पास आए तो वो एडजस्ट कर लेता है। यानी सरल चित्त गुण के कारण अपने अंदर एडजस्ट बना आ जाता है। इस पर एक दादी का मुझे एक क्लास में हमने सुना, जानकी दादी का, कि वो सिंध हैदराबाद की बात है कि दादी बता रहे थे कि एक माता थी बोले यज्ञ में ऐसी कि उनके पास कोई भी सेवादारी भेजेंगे 2 दिन के बाद वो छुट्टी कर देती थी बोले, इसका इतना कड़ा संस्कार था बोला उसका। तो एक दिन बोले ब्रह्मा बाबा ने मुझे भेजा बोले कि बच्चे आप वो माता की सेवा के लिए जाओ। तो दादी ने देखो उनकी वो सेवा की, कड़े स्वभाव संस्कार वाली थी लेकिन दादी ने उनकी 2 साल तक सेवा की बोलती। यानी देखो जो माता 2 दिन की इसको टिकनी नहीं देती थी तो वो दादी ने उनकी 2 साल तक सेवा की। यानी एक सरल चित्त गुण, यदि हमारे अंदर सरल चित्त गुण रहा तो हम क्या करते हर एक परिस्थिति को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये गुण जरूरी है, ये गुण रहा तो हमारे संबंध में कड़वाहट समाप्त हो जाती है। अभी तीसरा है यानी एक दूसरे की भावना को समझना। पहले हम देखे कि एक दूसरे की भावना को न समझने के कारण समस्या पैदा होती और एक दूसरे की भावना समझे तो समस्या समाप्त हो जाती है। तो यदि जो बड़े लोग हैं तो बड़े लोग कभी कभी क्या करते हैं, छोटे लोगों को यानी डांट भी लगाते हैं या प्यार से समझाते, यदि कोई गलती होगी उनसे तो समझा भी देते, तो छोटे को एकदम फील हो जाता है कि मेरी की तो छोटी सी गलती थी लेकिन इतना मेरे को डांट पड़ दिया। लेकिन उसने यही समझना चाहिए कि वो डांट तो लगी लेकिन उसी कारण मुझे शिक्षा मिली कि मैं अपने जीवन में आगे कुछ सुधार कर सकता हूँ। इसलिए बाबा ही बोलते हैं ना कि एक बार की हुई गलती दोबारा जो नहीं करता उनको सच्चा पुरुषार्थी कहते हैं। तो इस प्रकार हमें पुरुषार्थ करने का यानी कोई गलती यानी ठीक करने का उसने चांस दिया है। तो इस प्रकार समझना चाहिए यानी एक दूसरे की भावना को समझो। और चौथा है कि जो अपना अधिकार है अधिकार का योग्य उपयोग करना चाहिए। जो भी व्यक्ति समझो उसको एक ऊंचे पोजिशन पर है, तो उन्होंने जो उनको जो मिला है मान सम्मान समझो क्या वो तब पोज मिला है, तो उसका उन्हें क्या करना है उसी अनुसार व्यवहार करना चाहिए। जो भी व्यक्ति उनके संबंध संपर्क में आती है तो उनको मान सम्मान देना चाहिए, उसकी भावना को जान करके उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो यदि इस टाइप से व्यवहार करेंगे तो क्या हो जाएगा संबंध में यानी मधुरता आ जाएगी। तो इस पर मुझे एक जोक्स याद आ रहा है कि एक मालिक था और उनका नौकर था, तो मालिक ने नौकर को सेवा बताई थी, तो उसने बोला था कि एक गुलाब के पौधे है, पौधे को क्या करना पानी डाल देना। तो बाद में क्या बारिश आ गई, बारिश आई तो पानी देने की जरूरत नहीं, फिर उसने पूछा आपने पानी दिया क्या, तो वो बोला नहीं, तो क्यों पानी यानी आपने पानी क्यों नहीं डाला, छाता लेकर जाना चाहिए था ना। तो यानी कहने का भाव ये है कि हम अपने पद पोजिशन पर रहते हुए भी दूसरे को कुछ बताना चाहिए, नहीं तो हमारा पद वैसे बहुत ऊंचा है और एकदम हम ठीक से कि अपने छोटे लोगों से बात नहीं करते या उसको फील हो रहे, तो इस प्रकार कई व्यवहार नहीं करना चाहिए। यानी अपना जो पद पोजिशन है उसको सामने रखते हुए भी अपन छोटे से व्यवहार करना चाहिए। और एक लास्ट है यानी अपने लक्ष्य की स्मृति रखना चाहिए कि सदैव हमने क्या करना चाहिए, जो लक्ष्य हम जब स्टार्टिंग में जो बाबा के बच्चे बन जाते तो उस समय क्या करते हैं, किस लक्ष्य से हम ज्ञान में आते हैं कि हमें अच्छा पुरुषार्थ करना है, ऊंचा पद पाना यानी दिव्य गुणधर देवता बनना, ये हमारा लक्ष्य रहता है। और उस लक्ष्य के कारण हम यज्ञ में आते हैं, बाद में यज्ञ में आने के कारण जब सेवा में इतनी बिजी हो जाती है कि खुद को ही भूल जाती है और पुरुषार्थ एक साइड रहता है और अपन दूसरा ही कारोबार चालू कर देते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार के व्यवहार नहीं होना चाहिए, यानी जो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य को देखते हुए भी व्यवहार करना चाहिए, पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए चलना चाहिए, कारोबार संभालना चाहिए। तो इस पर एक रामायण की बात मुझे याद आ रही है कि जैसे प्रभु रामचंद्र ने क्या किया, रावण का वध किया, रावण का वध करने के बाद वो माता सीता को लेकर अयोध्या में आ गई। बाद में कुछ दिन तक उन्हें अच्छे तरह से राज्य किया, राज्य कारोबार चलाया, और वो चलाने के बाद क्या हुआ, प्रजा में से किसी ने ऐसा लांछन उठाया उनकी प्योरिटी के ऊपर, तो फिर उसी कारण प्रभु रामचंद्र को क्या करना पड़ा, माता सीता को वनवास में भेजना, फिर से जंगल में चली गई। बाद में क्या हो गया, वो ऋषि वाल्मीकि के द्वारा उनकी पालना हो गई, और बाद में पालना होने के बाद जैसा अश्वमेघ यज्ञ हुआ था प्रभु रामचंद्र ने किया था, तो उसमें वो लव कुश उनके बेटे थे उन्होंने उसको हराया था प्रभु रामचंद्र को। तो हराने के बाद यानी वाल्मीकि द्वारा उनका परिचय हो गया कि उसने बताया कि प्रभु ये आपके बच्चे है। तो बाद में वाल्मीकि ने क्या कोशिश की कि वो फिर से वो लोग मिल जाए यानी सीता माता को फिर अयोध्या में उनके साथ रहे परिवार में, तो फिर उनके कोशिश करके वो ले गया उनको। तो लेने के बाद फिर से राम ने ये प्रभु रामचंद्र ने बोला उनको कि प्रजाजन का कहना है कि माता सीता ने और एक बार अपना प्योरिटी का प्रमाण देना चाहिए। तो प्रमाण देने के लिए फिर वो प्रजा के सामने खड़ी रही और फिर उसने बोला कि जब मैं एक प्रभु रामचंद्र के सिवा किसी को अपने मन में यानी स्वप्न में मैंने किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि सदाई उनको भी अपने स्वामी के रूप में मैंने देखा, और ये बात सत्य होंगी तो माता पृथ्वी आकर के मुझे अपने गोद में ले लेंगी। तो वो बात सत्य थी क्योंकि वो अपने उसके जीवन में प्योरिटी धारण की थी उन्होंने। तो उतने में उस समय क्या हो गया, धरती माता आ गई और उसने बोला कि बेटी तू आ अब मेरे गोदी में, मैं आपको अपने लोक में ले जाऊंगी, ये दुखमय दुनिया इसमें सबको दुख ही दुख मिलता है, तो अपनी दुनिया में सुख है। तो जब वो धरती माता उसको लेके जा रही थी तो प्रभु रामचंद्र एकदम क्रोधित हो गया और उसने बोला कि मेरी सीता मेरे वापस दे दो, लौटा दो, उसको वापस नहीं लेके जा सकती है। और बाद में वो ले गई तो उसको इतना क्रोध आया कि उसने एक उसको यानी ऐसा संकल्प किया कि मैं एक बाण के तीर से पूरी यानी पृथ्वी को समाप्त कर दूंगा। तो फिर उतने में प्रभु यानी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने उसको स्मृति दे दिया कि भगवंत आप ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि आपका जन्म किसके लिए हुआ, पृथ्वी के कल्याण के लिए हुआ, और आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो फिर उसको स्मृति दिलाई। तो इस प्रकार हमें भी हर बार क्या करना है, अपने स्मृति में रहना है कि हम जब स्टार्टिंग में किस लक्ष्य से इस यज्ञ में आए थे, वो स्मृति बार बार चेक करके उसी अनुसार चल के बीच बीच में पुरुषार्थ भी करना है और दोनों का बैलेंस रख के जीवन में आगे बढ़ना है। अच्छा, ओम शांति।
शान है सच्चे मानव की शान है, क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है।